ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 श्लोक संख्या 26। एवं अघटमान मनोरथ के आकुल हृदय मृगधारक आभासेन स्व आरब्ध कर्मणा योग आरंभणत बिभ्रंसित स योग तापस भगवत आराधन लक्ष्मा भगवत आराधन लक्षणा च कथम इतरथा जाति अंतरे एण कुण के आसंग साक्षात निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक परित्यक्त दुसज्य हृदय हृदय अभिजातस्य तस्य एवं अंतराय विहृत योग आरंभणस्य राजा ऋषि भरतस्य तावृत मृग अर्भक पोषण पालन प्रीणनन अनुसंगेण अभिगणयत आत्मानम् अहि इव आखुबिलम् दूरतिक्रम काल कराल रभस आपदत्त। तो सर शब्दार्थ श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्लोक पढ़ने में 10 साल लगेंगे। एवं इस प्रकार अघटमान दुर्लभ मनोरथ रथ इच्छाओं से जो मन के रथ के तुल्य है आकुला दुखी हृदय जिसका हृदय मृगधारक आभासेन मृग छोने के समान स्व आरब्ध कर्मणा अपने प्रारब्ध के बुरे कर्म फलों से योग आरंभणता योगानुष्ठान से विभ्रंसित च्युत श वह राजा भरत योग तापस योग तथा तपस्या करता हुआ भगवत आराधन लक्षणात् श्री भगवान की भक्ति संबंधी क्रियाओं से च तथा कथम जिस प्रकार इतरथा अन्य जाति अंतरे अन्य जाति वाले एण कुण के मृग सोने के शरीर के प्रति आसंग अत्यधिक आसक्ति साक्षात प्रत्यक्ष निःश्रेयस जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्षतया प्रतिरोध प्राक पहले परित्यक्त छोड़ा हुआ दुस्सज्यद्यपि त्याग करने से अत्यंत कठिन हृदय अभिजातस्य अपने हृदय से उत्पन्न अपने पुत्रों तस्य उसका एवं इस प्रकार अंतराय उस प्रतिरोध से विहृता रोका जाकर योग आरंभणस्य जिसकी योग साधना का पद राजऋषे राजर्षि भरतस्य महाराज भरत का तावत तब तक मृग अर्भक मृग छोना पोषण भरण से पालन सुरक्षा में प्रीणन प्रसन्न करने में लानन दुलारने में अनुसंगेण निरंतर ध्यान करते रहने से अभिगणयत उपेक्षा करते हुए आत्मानम अपनी आत्मा की अहि इव सर्प के तुल्य आँख विलम चूहे का बिल दुरति कर्म दुर्लभ्य कालह मृत्यु करालह भयानक रभस गतिमान आपदत्य आ गया। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत मृग की दुर्दनमनीय आकांक्षा से अभिभूत हो गए। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण योग तप तथा भगवान की आराधना से च्युत हो गए। यदि यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ तो वे क्यों कर अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर अपने पुत्र तथा परिवार को त्याग देने के बाद भी मृग से इतना आसक्त होते हैं? वे मृग के लिए इतना रुद्रधर्म स्नेह क्यों प्रकट करते हैं? यह निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था। महाराज राजा मृग को सहलाने उसके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते थे कि वह आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे चले गए। कालांतर में दुर्लभ मूर्ति उनके समक्ष उपस्थित हो गई, जिस प्रकार विषधर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र में चुपके से घुस जाता है। अनुवाद आप लोग दोहराइएगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जोर से बोलिए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत मृग की दुर्दमनी आकांक्षा से अभिभूत हो गए। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वे योग तप भगवान की आराधना से च्युत हो गए। यदि यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ तो वे क्यों कर अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर अपने पुत्र तथा परिवार को त्याग देने के बाद भी इतना आकृष्ट क्यों हुए, वे मृग के लिए इतना दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते, यह निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उसके लालन पालन से इतना व्यस्त रहते वे आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे चले गए। कालांतर में दुर्लभ मूर्त उनके समक्ष उपस्थित हो गई। जिस प्रकार बिजदर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र में चुपके से घुस जाता है, अनुवाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगले श्लोकों में देखा जाएगा कि मृत्यु के समक्ष महाराज भरत को बाध्य होकर मृग का शरीर धारण करना पड़ा। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त के पूर्व दुष्कर्म तथा पापों का उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान, जो भक्ति भजन में लगे रहते हैं उनके पूर्व कर्मों के फल की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके अनुसार भरत महाराज को उनके पूर्व कर्मों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इसका निष्कर्ष यह निकला कि वे जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक लिप्त हो गए और अपनी उन्नति की उपेक्षा की। उनकी इस त्रुटि को तुरंत सुधारने के लिए ही उन्हें अल्पकाल के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया। यह तो उनकी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया था, किंतु उन्हें पशु शरीर दिया गया। किंतु वे यह नहीं भूल पाए कि जानबूझकर की गई उनकी त्रुटि के कारण ही ऐसा हुआ। वे इस मृग शरीर से उद्धार पाने के लिए उत्सुक थे, जिससे सूचित होता है वे भक्ति के प्रति अधिकाधिक स्नेहिल हो उठे, जिससे अगले जन्म में उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो गया। इसी दृढ़ विश्वास के साथ ही हम अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड में यह घोषित करते हैं कि वृंदावन में रहने वाले कुछ गोस्वामी जो जानबूझकर पाप करते हैं और वो इस पवित्र भूमि में कुत्ते बंदर और कछुए का शरीर धारण करते हैं, इस प्रकार वे कुछ काल तक निम्न योनि में रहते हैं और अपना पशु शरीर त्यागने के बाद पुनः वैकुंठ लोक जाते हैं। ऐसा अल्पकालिक दंड विगत कर्मों का फल नहीं होता। भले ही यह विगत कर्म के कारण प्रतीत हो, किंतु यह दंड भक्त को अपनी भूल सुधारने और भक्ति में आने के लिए दिया जाता है। अवज्ञान तिमरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदंतिहं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा महाराज भरत श्री श्री राधा राजबिहारी भगवान की गौर निताई भगवान की सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की श्रील प्रभुपाद की। महाराज भरत भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य में लिखते हैं पूरे विश्व के सम्राट हमारे भारत देश का नाम उन्हीं के नाम से है। पहले इस देश को अजनाब वर्ष कहते हैं थे, पिछले श्लोक में आपने पढ़ा होगा। तो भरत महाराज के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इनकी पत्नी का नाम था पंचजनी विश्वरूप की कन्या। पांच पुत्र इनके हुए और पांचों को राजपाट सौंप करके और चौथी अवस्था में हरिद्वार में पुलहाश्रम एक जगह है गंडकी नदी के किनारे, वहां ये भजन करते थे। और भरत महाराज जब राजा हैं तो इनके महल में नारद जी का आना जाना है। चौथी अवस्था में भगवान के भजन की तरफ कौन जाएगा, जिसके घर में साधु संतों का आना जाना होगा। तो नारद जी इनके घर में आते हैं महल में और भगवान ऋषभदेव जो भगवान 24 अवतारों में एक अवतार हैं उनके पुत्र हैं। और हरिद्वार में गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन करते थे। एक हिरणी आई, शेर पीछा कर रहा था, गर्भिणी थी। जहां पे भजन करते थे ठीक उसके सामने से उसने नदी में छलांग लगाई। बहुत डरी हुई थी, पानी में छलांग लगाने से उसका गर्भ निकल गया बच्चा और खुद मर गई, पानी में बह गई। ये बच्चा उधर तैर रहा था और भारत महाराज की नजर उस बच्चे पे पड़ी और उस बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में लेके आए। उसके मुंह का जाला निकाला, उसके बदन को साफ किया, दूध की व्यवस्था की और इसका लालन पालन करने लगे, ऐसी कथा भागवत में आती है। आसक्ति का कारण क्या है? वो हिरण का बच्चा था, आश्रम में ले आए, मुंह का जाला निकाल दिया, चरने फिरने लायक हो गया। महाराज को क्या करना चाहिए था? उसको हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उनकी जाति बिरादरी का नहीं है ना। राजा ने क्या किया? उसको अपनी जाति बिरादरी का बना दिया। उसका जानवर का शरीर है, शरीर भी मनुष्य से मिलता जुलता नहीं। जाति का हिरण है और महाराज उसको अपना बेटा समझते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कुत्ते पालते हैं, विशेषकर चौपाटी में आप सुबह सुबह जाइए 5 बजे घूमने तो कई बड़े बड़े रईस लोग कुत्ता घुमाने के लिए लाते हैं और कुत्तों के लिए नौकर भी रखे हैं लोगों ने, कुत्ते के रहने के लिए एसी रूम। यहां लोग गर्मी में मर रहे हैं, कुत्ता एसी रूम। जहाज में जाएंगे एग्जीक्यूटिव क्लास में कुत्ता, मैं कई देर फ्लाइट में देखा हूं। मेरे को तो कभी कोई टिकट देता तो हम इकोनॉमी क्लास में आते हैं पीछे, वो कुत्ता आगे आगे बैठा रहता। कुत्ते में आसक्ति, एक संत कहते हैं जो लोग कुत्ते से प्यार करते हैं या अपने पूर्व जन्म की तैयारी करते हैं अगले जीवन की, यानी अगले जन्म में इनका कुत्ता बनना निश्चित है जो कुत्ते को प्यार करते हैं। इसे भरत महाराज ने उस मृग से प्यार किया, उस मृग को महाराज से कुछ लेना देना नहीं है, किस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया, अपना भजन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया मेरे पालन पोषण करने में, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और एक दिन हिरणों का झुंड आया और वो अपनी जाति बिरादरी के लोगों के साथ चला गया, तो इसमें महाराज बहुत दुखी हैं। इन श्लोकों में कहा गया, उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं, कहां होगा, भूखा तो नहीं होगा, किसी ने उसको मार तो नहीं दिया होगा। फिर सोचते नहीं नहीं, जरूर चंद्रमा ने उसकी रक्षा की होगी, जरूर किसी ने उसकी रक्षा की होगी, जैसे मैं उसको पकड़ लेता था जरूर किसी ने पकड़ लिया होगा। कई ध्यान उनके मन में, जैसे हमारी कोई प्रिय वस्तु खो जाए या लड़का ही खो जाए, कितने ध्यान आते हैं, कहीं गाड़ी की चपेट में ना आ गया हो, कहीं बह नहीं गया हो, कहीं बाढ़ में न बह गया हो, फिर ध्यान आता नहीं नहीं वो रोड के किनारे होगा, लेकिन एक्सीडेंट से पहले किसी ने जरूर पकड़ लिया होगा, उसको बचा लिया होगा। अपने मन का ध्यान, क्योंकि उस जीव से प्रीति होती है, तो कई तरह के भाव में। तो महाराज भरत भी उस मृग के बारे में तरह तरह की बातें सोचते हैं, और अंत में उसके चिंतन में शरीर छोड़ देते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी श्लोक में तात्पर्य में लिखा है कि भरत महाराज अपने भक्ति मार्ग से उस हिरण के कारण क्यों च्युत हुए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये भरत महाराज के पूर्व जन्म का फल नहीं है। भरत महाराज यहां पर अभिनय कर रहे हैं, किस शिक्षा के लिए, कि कोई व्यक्ति कितने ही भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाए, उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा पतन नहीं होगा। शिक्षा दे रहे हैं, हर मार्ग में शिक्षा है। कोई व्यक्ति यह ना समझे कि मारा पति खरब पति हो गया, रोड में भी आ सकता है रात में, गड़बड़ करेगा। तो भक्ति मार्ग तो है ही, व्यावहारिक जीवन में भी अगर हमारे पास कोई वस्तु हो जाए, हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएं, बहुत धनी हो जाएं, बहुत बलवान हो जाएं, पहलवान हो जाएं, कोई टाइम लगता है नीचे उतरने में, कई मूवी स्टारों को आपने देखा होगा, फिल्मों में सब लोग इनको देखते हैं, मैंने देखा है इनको, किसी की टांग टेढ़ी है, इधर बैंक में खाता था, कहीं ओवरसीज बैंक था इधर, तो कई हीरो ये लोग आते इधर लाठी से लचक के आ रहे। एक बार हम मेडिकल कैंप लगाते थे, दो तीन को तो कैंसर हो गया था, लाइन में खड़े थे। तो एक जमाने में इतना नाम, और जिन लोगों को मालूम नहीं हो तो अभी भी उनकी पिक्चरें देखते हैं टिकट खरीद के ब्लैक में, लेकिन उनकी हालत क्या खराब है देखो ना, पांव सीधा नहीं है, मुंह सीधा नहीं है, कमर सीधी नहीं है। एक बहुत फेमस मूवी स्टार है, सब लोग जानते हैं उसको, मैं एक बार उसको मिलने गया था गोरेगांव में, 10 कुर्सी लगा के बैठा हुआ था, प्लास्टिक का कुर्सी होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर 10 बैठा था, कमर में उसको स्पाइन का प्रॉब्लम है, हालत खराब है। तो यहां पर महाराज भरत ये बता रहे हैं कि भक्ति की इतनी ऊंची स्थिति पर होने पर भी एक हिरण के बच्चे पर आसक्त होकर के मेरी भक्ति नष्ट हो गई, भरत महाराज किस पे आसक्त हुए? किसी धन पद आसक्त नहीं हुए, क्योंकि वो तो पूरे विश्व के सम्राट हैं, सुंदर पत्नी बच्चे पूरा भरा पूरा परिवार है। ये कोई बात कही जा सकती है कि किसी कुत्ते के बच्चे और हिरण के बच्चे पे आसक्त हो गए? एक आम आदमी भी माजा कोई सन्यासी या कोई तपस्वी का पतन हो जाए, आपने सुना कुतिया के बच्चे पर हो गया सुना, या बिल्ली के हिरण के बच्चे पर आसक्त हो गया तो सन्यास धर्म से चला गया सुना? लेकिन भरत महाराज हिरण के बच्चे पर आसक्त हो, तो ये अभिनय नहीं तो क्या है? इसलिए अभिनय कर रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। हम समझते हैं हम बहुत बड़े भक्त हो गए। भरत महाराज कहते हैं मैं भी बहुत बड़ा भक्त हो गया था, लेकिन हिरण के बच्चे के कारण तुरंत नीचे उतर। इससे भरत महाराज का अभिनय, फिल्मों में आपने देखा होगा कई लोग भिखारी का रोल करते हैं, भीख मांगता है पिक्चरों में, और भीख मांगने का 1 करोड़ रुपए लेता है, और खुद भी करोड़पति पहले से है, देखा उन्होंने। या कूली का रोल करेगा, बोझा ढोएगा, और बोझा ढोने का 2 करोड़, और फिल्मों में कितना लेता है, 2 रुपया 3 रुपया ऐसे रोल करता है वो। वैसे कूली थोड़ी है, अगर असली कूली हो तो रात को चाय पीने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता, एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल सकता, लेकिन अभिनय कर रहा है करोड़ों रुपया मिलता है। इससे भरत महाराज अभिनय कर रहे हैं भगवान की प्रेरणा से। और उसका पारितोषिक क्या है, तनखा भगवान की कृपा महाराज भरत को मिलेगी। इससे भरत महाराज मृग के पति अत्यधिक आसक्ति होने का अभिनय कर रहे हैं, और तुरंत उन्होंने शरीर छोड़ दिया चिंतन करते करते। दुर्लभ मूर्ति उनके समक्ष उपस्थित हो गई, और जिस प्रकार विषधर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र में छुप जाता है, वैसे ही भरत महाराज ने शरीर छोड़ दिया। और अगले जन्म में क्या हुए, रूपाजी तात्पर्य बताते हैं। अगले जन्म में हिरण बन गए, क्योंकि मरते वक्त हिरण के बच्चे का स्मरण किया। यंग यंग वाप स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम तंग तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता में भगवान का वचन है, मरते वक्त जो जिस चीज का स्मरण करेगा वही उसकी अगली गति होती है, ऐसा गीता कहती है। आजकल आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े सेठ लोग अरबपति खरबपति मर जाते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, वो कॉलम आता है ना, हमारे पिताजी का वैकुंठवास हो गया है, शोक सभा पेडर रोड में रखी गई है, या मरीन ड्राइव के सामने वाले बंगले में शोक सभा 5 बजे से 7 बजे है, वैकुंठवास हो गया है, तुम्हारे पिताजी का राज है उधर, दिन भर नोट गिनता है कितनों को चूना लगाया। पैडर रोड मरीन ड्राइव में ऐसे फ्लैट मिल जाते हैं, या कोलाबा में इतने बड़े अपार्टमेंट में आप रहते हो 10 करोड़ के, वो क्या कुली का गधे की तरह मेहनत का पैसा है, चूना लगाया किसी को होगा, इसलिए होगा। अखबार में लिखने से मैगजीन में छापने से क्या वैकुंठवास होता है? कहीं गीता में भागवत में लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप देना गोलोकवास हो गया ठीक है? कहीं भरत महाराज ये भी शिक्षा हमको दे रहे हैं, देखो हमने हिरण का चिंतन किया, अगला जीवन हिरण का हो गया, तो आम आदमी का जीवन कैसे अच्छा हो जाएगा? इसलिए मरते वक्त जो भगवान का स्मरण करेगा उसी को भगवान बोलेंगे। पंचम स्कंद में 28 तरह के नरकों में वर्णन है। एक तरह का नरक नहीं होता, हम किसी को गाली देते हैं, डांटते हैं, नरक में जाएगा। अरे कौन से नरक? नरक का नाम भी तो बताओ। 28 तरह के नरक हैं, सबके अलग अलग एड्रेस, अलग अलग डिटेल, सब बायोडाटा सब अलग तैयार होते हैं। तो जो भगवान का भजन करेगा, अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मदभावम यास्ति नास्ति संशय। गीता में का जो हमारा स्मरण करेगा हमको प्राप्त होगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं। हमारे एक वैष्णव आचार्य हुए श्रीधर स्वामी, ये श्रीधर स्वामी नहीं हमारे इस्कॉन के, इससे पहले एक श्रीधर स्वामी हुए, श्रीधर महाराज भी हैं हमारे इस्कॉन में, लेकिन प्रभुपाद जी के टाइम में श्रीधर महाराज हुए गौड़ी वैष्णव। तो उसमें भारत के एक राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, उसका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उन्होंने श्रीधर महाराज को एक बार चिट्ठी लिखा, खत, कि आप कहते हो कि मरने के बाद ये होगा वो होगा, या कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, बैल बनोगे, गधा बनोगे, आप भाषण देते रहते हो, 28 तरह के नरक होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हमारे देश के दो प्रसिद्ध नेता, प्रोमिनेंट लीडर, इस संसार में अभी नहीं है, आप क्या बता सकते हैं कि वो इस वक्त कौन सी योनि में होंगे? श्रीधर महाराज ने लिखा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्रीधर महाराज को। तो श्रीधर महाराज ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के खत का जवाब दिया, राष्ट्रपति भवन में हो सकता है खत अभी भी, लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसे खत नहीं दिखाती। तो श्रीधर महाराज ने लिखा कि भारत के जिन दो नेताओं का, जो जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, फेमस नेता, आप मुझसे पूछते हैं कि वो इस वक्त कौन सी योनि में है। तो श्रीधर महाराज ने एड्रेस दिया कि स्वीडन के फलाने शहर में, उस शहर के फलाने इलाके में, फलानी गली में, एक कोठी में दो पोमेरियन कुत्ते बने हुए हैं, जाके देख लो। श्रीधर महाराज ने लिखा, जिंदगी भर भौं 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 किया तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत देवता हो जाओगे? जिंदगी भर नेतागिरी में बड़ा बड़ा भाषण 3 दिन पहले से लिख लिया, 2 दिन पहले से तैयार कर लिया, कल बोलना है तो आज रात भर नहीं सोए प्रैक्टिस करने में, कैसे बोलूंगा, क्या क्या करूंगा, और जनता को गुमराह कर करके जीत गए, पैसा कमाया, नाम कमाया, और अब क्या ऊपर भी हमारा ही नेतागिरी चलेगा क्या? ऊपर हमारी नेतागिरी नहीं चलता है। अजामिल प्रकरण में बताया, 6 स्कंद में बहुत मार पड़ती है ऊपर, बहुत। अजामिल उपाख्यान पढ़िए, जब यमदूत ले जा रहे थे अजामिल को, जो व्यक्ति जितना बड़ा सेठ होगा उतनी ज्यादा धुलाई होती है उसकी, किधर से लाया पैसा इतना, किधर से हिसाब दे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स को तो तुम हिसाब ठीक ढंग से देता नहीं, इधर दे। और जितने बड़े आप समझेंगे, हमने दुनिया को अपने भाषण के बस में कर लिया, अपने एक्टिंग से हमारे पर आसक्त हो गए, आप हम दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, भगवान को नहीं। भगवान के यहां तो बहुत पिटाई, भगवान थोड़ी पिटते हैं, उनके यमराज लोग, थानेदार, ये पुलिस वाले सब, देखा पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं सिग्नल पर, ऐसी भगवान के भी पुलिस वाले बहुत पिटाई करते हैं। इसलिए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जब भगवान का नाम जीवा पाएगा, अंत काले च नारायण स्मृति ही,
पूरे जीवन भर अभ्यास क्या करना है कि मरते वक्त इस जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए। नाम कैसे आएगा? अभ्यास करने से आएगा। जिंदगी भर जिस चीज का ज्यादा अभ्यास होगा वही चीज मरते वक्त याद आती है। मैंने टाटा हॉस्पिटल में देखा एक बार, एक गोवा का कैंसर पेशेंट, दारू पीने से उसका लीवर सब आंतड़ी खराब, एडवांस केस था, नाक में पाइप डाल के जूस पिला रहे थे, चाय भी उसी में सब। मैं टाटा हॉस्पिटल जाते रहता हूं तो एक दिन वो पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब आप इसमें चाय भी डालते हो, दूध भी डालते हो, दाद भी डालते हो, सूप भी डालते हो, सब डालते हो, रात को थोड़ा सा आधा बोतल दारू भी डाल दिया करो। अब मरना तो है ही, क्योंकि इसके खातिर तो मैं अपना जीवन दान दे रहा हूं, बलिदान कर रहा हूं अपना, तो कम से कम मरते वक्त, क्योंकि जिंदगी भर शराब पिया मरते वक्त दारू याद है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयन। जिस चीज का अभ्यास आप जीवन में ज्यादा करोगे मरते वक्त वही चीज आती है। इसलिए ये बात प्रमाणित होती है, कोई ये कहे नहीं मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा। कई लोगों को आपने देखा होगा सब कर्म करना चाहिए, अर्जुन ने कर्म योग की शिक्षा दी है, पैसा भी कमाओ, चूना भी लगाओ, भजन भी करो, राम नाम जपना, पराया माल अपना। किधर गीता में लिखा है राम नाम जपना पराया माल अपना? ये भक्ति नहीं है। कर्मयोग में भी चार योग है। कर्मयोग तो पहला योग हुआ ना, लेबरी। जैसे एक फैक्ट्री में चार तरह के आदमी काम करते हैं, लेबर, सुपरवाइजर, मैनेजर और डायरेक्टर। तो लेबर, जो लेबर क्लास है, कर्मयोग। फिर आया ज्ञान योग, सुपरवाइजर क्लास, ध्यान योग मैनेजर क्लास, भक्ति योग डायरेक्टर क्लास। सबसे ज्यादा मेहनत लेबर, तनख्वाह सबसे कम, गधे की तरह काम करो पैसा गिना चुना, सुपरवाइजर उससे भी कम काम करता है पैसा ज्यादा, मैनेजर सिर्फ चमचागिरी करेगा मालिक का सबसे ज्यादा तनख्वाह, और डायरेक्टर 12 बजे ऑफिस में आएगा 2 बजे चला जाएगा, सारी कंपनी का प्रॉफिट उसको गया, और पूरा बैग पकड़ा देगा किसके हाथ में? बीबी के हाथ में, बीबी को फैक्ट्री का एड्रेस भी मालूम नहीं, उसको फैक्ट्री का एड्रेस मालूम नहीं, हमारी फैक्ट्री में क्या बनता है क्या होता है कुछ मालूम नहीं, और पूरा सूटकेस थामने पहले आ जाती है। क्या करती है वो फैक्ट्री के मालिक की चमचागिरी करती है, सिर्फ पूरा बैग हत्या लेती है। चमचागिरी क्या है? भगवान का नाम कीर्तन, उनकी कथाएं सुनना, ये भगवान की चमचागिरी है। तो जो भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, वो भगवान की कृपा के पात्र होते हैं, सब अधिकार उनको मिल जाते हैं। कोई कहे मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ये आरोप सिद्धा भक्ति। भक्ति सामत संधों में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तीन तरह की भक्ति होती है, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। मैं ये भी करूं ये भी करूं, यही भक्ति है आरोप सिद्धा भक्ति। मेरा आरोप है लेकिन वास्तव में वो बात सही नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, इसने चोरी की है, प्रमाणित नहीं है बात, खाली डाउट है, किसी से सुना हमने शायद इसने चोरी की होगी, लेकिन बाद में इंक्वायरी भी पता लगा कि ये तो चोर है ही नहीं। तो ऐसे मेरा आरोप है, ये सब करते रहो और भजन भी करो, काम करते रहो नाम जपते रहो, ये आरोप सिद्धा भक्ति हुई। संग सिद्धा भक्ति है भगवान के भक्तों का संग करना। भक्त किनको कहते हैं? जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए दूसरे कर्मों को त्याग दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उन लोगों का संग करना, ये नहीं कि उन लोगों को उपदेश करना, ऐसा नहीं। कई भक्तों को हमने देखा, प्रभु जी ऐसा मत करिए, अपराध है, जा डोंट टीच मी, ये फिलॉसफी मैं जानता हूं, हमको ज्यादा उपदेश मत करो। ये संग सिद्धा भक्ति नहीं है, ये आरोप सिद्धा भी नहीं है, ये खड्डा सिद्धा भक्ति है। सीधे खडर में जाएगा वो, गडर में। फिर ऐसे के लिए नई भक्ति का आविष्कार करना पड़ता है, खड्डा सिद्धा भक्ति। और भक्तों के साथ उनके द्वारा बताए गए आचरण पर रहना। अब जो लोग फुल टाइम डिवोटी हैं, मंदिर में रहते हैं, मंदिर के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, उनको सिखा सेविंग सब फिट फाट होना चाहिए। ये नहीं अपने मन का कुछ भी शास्त्र। मैं पुणे में गया था कथा करने में, एनडीए खड़कवासला में, हमने देखा हाईली एजुकेटेड लड़के जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर बनेंगे, ट्रेनिंग में है अभी, उनका बालों का शेप इधर का बाल ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर टोप जैसा। और उस रैंक के जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका भी ऐसा ही, ये नहीं कि अब हम ब्रिगेडियर बन गए अब बस मूवी स्टार जैसा बाल ढलकाते चलो। आर्मी का नियम है, आप चाहे ब्रिगेडियर हो कर्नल हो, जबकि वो जीवन एक व्यवहारिक है, उसके ये सब एक्टिंग करने से थोड़ी तनख्वाह मिलती है, लेकिन जहां भगवत प्रेम मिलता हो, हमारा परलोक सुधरता हो, हमारी पीढ़ियों का कल्याण होता हो, वहां भी तो कुछ सेफ नियम होंगे। इसलिए भक्तों के बताए गए बातों का आचरण करना, शिखा रखना, शेविंग करना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, कंठी माला, सीनियर भक्तों को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, सन्यासियों को प्रणाम करना, ये हम करते हैं तब ये संग सिद्धा भक्ति हुई। इसका उदाहरण, एक कीड़ा पीछे माताजी फूल बना रहे हैं, तो फूल के अंदर कीड़े भी होंगे, मार्केट से आए होंगे, तो कीड़ों का मन करता है हम भगवान के ठाकुर जी का दर्शन करें, तो जो कीड़े माला बजाते वक्त नजर में आ गए वो तो झाड़ के फेंक दिए जाते हैं, लेकिन कई भाग्यशाली कीड़े फूल से बाहर नहीं आते, अंदर ही रहते हैं, तो उन फूलों की माला बन गई और माला राधा राजबिहारी के गले में चले जाए। तो जो कीड़ा भगवान का दर्शन करने का इच्छुक है, फूल का संग करने से, संग सिद्धा भक्ति करने से, वो ठाकुर जी के गले का हार भी बन सकता है, लेकिन कब, जब वो फूल से चिपका रहेगा तब। अगर वो सोचेगा चलो थोड़ा बाहर घूम के आए फूल से बाहर, फिर बाद में अंदर आ जाएंगे, इतनी देर में क्या होगा, या तो माला बन जाएगी, वो फूल कहीं माला से लग जाएगा, या किसी की नजर पड़ जाएगी, उस कीड़े को बाहर फेंक देगा। ये तो हुई माला बनते वक्त की बात, उसको ठाकुर जी के गले में भी खतरा है। अगर उस फूल की माला बन जाए, माला के अंदर वो कीड़ा चला जाए, और कीड़ा राधा राजबिहारी के गले में चला जाए, और ठीक 12:30 बजे का राजभोग लगा हो, और कीड़े का मन हुआ अभी पुजारी इधर उधर गए हैं, मैं थोड़ा सा खीर खा गया हूं नीचे जाके, मन किया था मालपुआ खा के आऊं फिर अंदर आ जाऊंगा, और जैसे ही मालपुए के चक्कर में थाली में आए, इतने में पुजारी जी आ गए घंटी बजाने के लिए, नजर पड़ गई उसकी पूरा उसका चुटिया पकड़ के बाहर निकल गया। तो संग सीधा भक्ति का मतलब भगवान के भक्तों की शिक्षा के रक्षण में रहना, परिवेश में रहना। कोई कहे अब बहुत भक्तों का संग हो गया, सब सीख गए हम, 700 श्लोक याद हो गया, 18,000 भागवत का याद हो गया, अब भाषण देना भी अच्छा आ गया, अंग्रेजी भी अच्छा बोल लेते हैं, और मेरी बातों में हर कोई आदमी मेरे चक्कर में आ जाता है, चलो अब अपने मन से कुछ करें, क्या होगा? कुछ कर नहीं पाएगा, भगवान उसकी चुटिया पकड़ के उसको बाहर कर दे, ये हो जाएगा। यह है संग सिद्धा भक्त, स्वरूप सिद्धा भक्ति है, भगवान के भक्तों का संग करते हुए नित्य प्रति भगवान के चरणों का ध्यान, उनकी कथा का ध्यान, उनका नाम संकीर्तन, गुरुजनों द्वारा, ज्येष्ठ वैष्णों द्वारा बताए गए सेवा करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, इसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं। यही कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तीन तरह के अधिकारी, तीन तरह की भक्ति, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा, और इसी को प्रथमा, द्वितीय या उत्तमा भक्ति जिसको कहते हैं कहा जाता है। तो भरत महाराज उत्तमा भक्ति में स्थित हैं, स्वरूप सिद्धा भक्ति में, लेकिन अभिनय कर रहे हैं, इतनी बड़ी स्थिति पर होते हुए भी मेरा पतन हो गया एक हिरण के बच्चे को देख करके, इससे नित्य प्रति प्रभु का ध्यान। एक राजा के अस्तबल में, अस्तबल कहते हैं जहां घोड़े बैठ, जैसे गौशाला, गौशाला मतलब जहां गाय बांधी जाती है, अस्तबल कहते हैं जहां घोड़े बांधे जाते हैं। तो उस अस्तबल में कुछ बंदर रहते थे। दृष्टांत महासागर में बड़ा अच्छा दृष्टांत है। तो राजा के एक रसोई में उन घोड़ों के लिए मुरब्बा की व्यवस्था थी, अचार मुरब्बा आंवले का, उन घोड़ों को मुरब्बा खिलाया जाता था, मुरब्बा खाने से घोड़े तकड़े होते। तो जो रसोई में उन घोड़ों के लिए मुरब्बा रखा जाता अचार, ये बंदर लोग भी अस्तबल में रहते हैं, तो ये भी जब रसोई खोलता, जब घोड़ों के लिए मुरब्बा निकालता, तो ये बंदर लोग भी खूब मुरब्बा खाते थे। तो मुरब्बा खाने से ये लोग एकदम तगड़े और लाल हो गए, लाल तो होते ही हैं और लाल हो गए। तो एक बूढ़ा बंदर दूर कहीं बैठा रहता, वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता था, रसोई घर में भी नहीं आ सकता था। तो उस बूढ़े बंदर ने एक बार जवान बंदरों से कहा, अरे बंदरों, तुम लोग आजकल मुरब्बा खा करके बहुत लाल हो गए हो, तगड़े, तो मेरे को लगता है कि ये तुम्हारा भविष्य ठीक नहीं है। तो जवान बंदरों ने कहा, तुम बूढ़ा हो गया है, दौड़ नहीं सकता है, मुरब्बा खाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं, अब हम मुरब्बा खाते हैं तो अंदर से चिढ़ता रहता है, और हम भी ना खाएं करके इस तरह की बात कर रहा है। बूढ़ा बंदर बोला, एक दिन सब पता लग जाएगा तुमको कि मुरब्बा किस भाव तुम्हारा बिकेगा, सब पता लग जाएगा, एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। एक दिन अस्तबल में जहां घोड़े रहते थे उसके पास में घास का चट्टान था, घास, घोड़ों की घास रखी हुई थी, तो एक चट्टान ऐसा था, गट्ठा, जो घास सूखे हुई घास का था, सूखा। तो अचानक वो करंट लगने से शॉर्ट सर्किट हुआ, तो घास में आग लग गई, और आग लगने से अस्तबल में जितने घोड़े बंधे थे सब घोड़े जल गए, और किसी का जांग जल गया, किसी की पीठ जल गई, किसी। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया, कहा कि हमारे घोड़े जख्मी हो गए हैं, अब इनको जल्दी से कैसे इनके घाव भरे, कोई ऐसा उपाय बताइए। राजवैद्य ने कहा, अगर बंदरों का मांस काट करके इनके ऊपर लगा दिया जाए, घोड़ों के घाव पर, तो इनके घाव जल्दी बढ़ सकते हैं। राजा ने कहा हमको तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं, हमारे अस्तबल में ही बंदर आते हैं रोज, तो ये रोज मुरब्बा खाने आते थे। उस दिन सब बंदरों को पकड़ लिया राज कर्मचारियों ने और सबकी एक एक जांग काट करके घोड़े की जांग पर लगा दी। तो बूढ़ा बंदर दूर से हंस रहा था, खाओ और मुरब्बा, मैं तुमको मना करता था ना, मत खाओ मत खाओ, और खाओ। सारा मुरब्बा निकाल गया, घोड़े की जांग पर लगा दिया। तात्पर्य क्या है, हम सोचते हैं, हम गड़बड़ करते हैं, घोटाला करते हैं, फिर भी मजे में रहते हैं। अरे एक दिन मजे में रहेगा, दो दिन रहेगा, तीन दिन रहेगा, हर दिन रहेगा क्या? हम आदमी को आंखों में पर्दा झोंक सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, ये भगवान को भी आंखों में झोंक सकते हैं? ये राधा राज बिहारी जो बैठा है इसकी आंख में भी पर्दा डाल सकते हैं? डरना चाहिए इससे। हमने उस आदमी को गुमराह कर दिया इधर उधर का बात करके, फायदा उठा लिया, और इससे फायदा उठाओ ना। भगवान इतने सीधे साधे नहीं हैं। भगवान का एक नाम टेढ़ो, तीन जगहों से टेढ़ो। भगवान का आरती में कहीं सुना सीधो? सुना टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। अगर ये टेढ़ो इधर को टेढ़ो हो गया तो हमारा सब टेढ़ा हो जाएगा। अभी तो अपने तक ही टेढ़ा है, अगर कहीं घूम फिर के अपने पर चिपक गया फिर अपना। इसलिए कम से कम उस टेढ़ों से तो डरो कि ये टेढ़ा आज मेरे को सीधा किया, दो दिन सीधा किया, तीसरे दिन अगर कभी अपनी चपेट में ले लेगा तो मेरे को तो हमेशा के लिए टेढ़ा कर। ये बंदर का उदाहरण। इसलिए भगवान का भजन करना है, इसलिए भी करना है जब तक ये मनुष्य जीवन है यहां भी सुखी रहें, और शरीर छोड़ने के बाद जिधर भी जाएं उधर भी सुखी रहें। भजन तो है वैसे परमार्थिक कि परलोक के लिए कुछ यहां से तैयारी की जाए, लेकिन भगवान की कृपा से जीव जब भगवान का भजन करता है तो इस लोक में भी सुखी रहता। भगवान का भक्त कहीं दुखी नहीं रहता। एक राजा के राज्य में एक राजा मर गया और नए राजा की खोज करने लगे मंत्री लोग। तो राजा के कोई वारिस तो था नहीं, लड़का वगैरह जिसको राजा बनाए। तो मंत्रियों ने एक नोटिस बोर्ड लगाया गेट पर कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हो राजा बनने के लिए आमंत्रित है, लेकिन एक साल तक और एक साल बाद उसको काला पानी भेज दिया जाएगा, और जो इच्छुक प्रार्थी हैं तुरंत आवेदन करें। ऐसा बोर्ड लगा, बहुत बड़ा बोर्ड, सब पढ़ते हैं अरे राजा, लेकिन जब नीचे पढ़ते काला पानी भेज दिया जाएगा एक साल बाद, बाप रे। कई ऐसे भी थे, मरना तो है ही, दस साल बाद बने या बीस साल बाद, चलो एक साल बाद ही सही, कम से कम राजा तो बन जाएंगे, एक साल नाम हो जाएगा, चलो चलो राजा। तो राजा बन जाते हैं, ठीक एक साल पूरा होता, मंत्री लोग सीधे काला पानी, उस समय काला पानी नहीं था, घनघोर जंगल थे जहां शेर हाथी भेड़िए भूखे रहते थे, तो आदमी को छोड़ दिया जाए तो तुरंत झपटा मार के खा लेते। ऐसे घनघोर जंगल में, बियावान जंगल में छोड़ा जाता था। तो कई लोग राजा बनते, एक साल बाद छोड़ दिए जाते, उनको शेर भालू खा लेते। ऐसे ही कई साल तक हुआ। तो एक बार एक भगवान के भक्त जा रहे थे उधर से, उन्होंने भी नोटिस बोर्ड पढ़ा, इच्छुक व्यक्ति कोई भी राजा बनना चाहता है अंदर आइए, फॉर्म भरो और राजा बनो। तो भक्त ने कहा मंत्रियों से इस बार राजा हम बनेंगे। मंत्रियों ने कहा नोटिस बोर्ड पढ़ लिया? पढ़ लिया। एक साल बाद जंगल में जाना है ना, खतरनाक जंगल जाएंगे। लेकिन भक्त ने कहा जब हम एक साल राजा रहेंगे तो हमारी हर बात का पालन होगा। मंत्री बोले होगा। जब आप एक साल राजा हैं, आप दिन को रात कहेंगे, हम भी रात कहेंगे, और रात को दिन कहेंगे, दिन कहेंगे, यानी जो ऑर्डर आप करोगे वो होगा। उसने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और आप हमारी शर्त मंजूर करो। मंत्री ने कहा हमको आपकी शर्त मंजूर है, आप हमारे राजा हो एक साल। तो तुरंत जो भगवान का भक्त है, कृष्ण भक्त, उसको राजा बना दिया। तो उसने पहले दिन सर्कुलर निकाला, रेजोल्यूशन पास किया, ये जो भयानक जंगल है, एक साल बाद जहां ये खतरनाक जानवर रहते हैं, इस जंगल को साफ कर दिया जाए। पहले दिन, दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, रेजोल्यूशन निकाला, तुरंत यहां कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए, एक सिटी बनाई जाए, अच्छे मॉल, बंगला, बड़े बड़े टावर, चिड़ियाघर। एक महीने में वो जो खतरनाक जंगल था, वो भगवान के भक्त ने पूरा शहर बना दिया जैसा शहर पहले था। और एक साल में तो वहां क्या क्या बन गया। तो जब एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो भक्त ने मंत्रियों से कहा कि मंत्री जी अब हम किधर जाएं? तो मंत्रियों ने कहा आप चाहे आप इधर जाएं या उधर जाएं, आपकी मर्जी। क्योंकि मंत्रियों को मालूम है उधर जाएंगे, उधर भी उन्होंने ऐसे ही बना दिया जैसे महल में रहते हैं। तो भगवान का भजन करने से जब तक जीव मनुष्य शरीर में रहता है तब तक भी सुखी रहता है, और जब शरीर छोड़ के भगवान के धाम जाता है वहां की भी तैयारी यहां से करके जाता है। ये तैयारी हम लोगों को करना है, ऐसा शास्त्रों में, महापुरुषों की वाणी में बताया है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। नाम संकीर्तन, भगवान का नाम, चार नियमों का पालन। ये चार नियम भागवत में प्रथम स्कंद में कली परीक्षित संवाद में भी दिए गए हैं। जो इन चार नियमों का पालन करता है, प्रभुपाद जी ने जो बताए हैं, तो कली के प्रभाव से मुक्त रहता है। भगवान का नाम उसकी रक्षा करता है, भगवान की कथाएं उसकी रक्षा करती हैं, और उसका आचरण ठीक रहता है, विचार ठीक रहते हैं। देखिए, भगवान का भजन करना ये सर्वोच्च सिद्धि है। हमने कल एक व्यक्ति को, हम अंबोली गए थे एक टोनी गैरेज में, जो इस्कॉन की गाड़ियां ठीक करते हैं, तो जो उसके मालिक हैं टोनी साहब, उनकी उम्र है 86 साल, लेकिन अभी भी कैसा काम करते हैं, एकदम 40 साल की तरह, दांत एक भी नकली नहीं, एकदम बहुत, और बहुत कोई बीमारी नहीं उनको। तो हमने उनसे पूछा कि आपके ये स्वस्थ एकदम एक्टिव शरीर का राज क्या है? उन्होंने कहा कोई राज नहीं, जो आम आदमी खाता है मैं भी खाता हूं, जैसे आम लोग रहते हैं मैं भी रहता हूं। लेकिन उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, बुरी आदतें नहीं की, किसी को गाली नहीं दी। और उन्होंने एक बात बताई, मैंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं, किसी को दुखी नहीं किया। और उन्होंने बताया कि ये शिक्षा हमको बाइबल से मिलती है, वो चर्च में जाते हैं ना, कहा कि जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा है। अब मैं 32 माला जाप करता हूं, 64 माला जाप करता हूं, और दूसरे की जेब काटते रहता हूं, ये कोई बात है? मैं 30 साल 40 साल पुराना भक्त हूं, पूरा शास्त्र जानता हूं, इधर का उधर करते रहता हूं, ये कोई भक्ति है? ये सब चीजें, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये भी हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्त हैं, ये सब आचरण हमारे अंदर होना चाहिए। स्पष्ट वक्ता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी से छल कपट नहीं। अपने हृदय की बात लोगों को कह दो। उपदेशामृत उपनिषद में क्या कहा, ददाति प्रीति गण्याति गुई माख्याति पृच्छति भुंगते भोजते च व षटविदम प्रीति लक्षणम। प्रीति के छह लक्षण बताए हैं। अगर ये आम बातें, ये बेसिक चीजें हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बराबर नंबर एक ढोंगी कोई नहीं है। साधु का चोला पहन करके, तिलक लगा करके, बड़ी बड़ी शास्त्रों का उपाख्यान दे करके, जब ये बेसिक चीजें हमारे जिहा में नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं है, इससे अच्छा मर जाना चाहिए। ये भक्ति का नाटक नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, इधर का उधर करना, दूसरे का वो करना, ये जो छिछोरे लोग काम करते हैं, ये भक्त का काम नहीं है। अगर वो चरम सीमा पर है, कृष्ण का नाम जाप करता है, भागवत कथा का श्रवण करता है, राधा कृष्ण का दर्शन करता है, इतनी निम्न कोटि की हरकत नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसका किया कराया सब बेकार है, चाहे दुनिया को कितना ही बेवकूफ बनाए। शास्त्र इसके प्रमाण है हमारे। इन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर है भी मंथन करना, क्यों हो गया ऐसा, मैं कृष्ण नाम जपता हूं, मैं भागवत कथा सुनता हूं, करता हूं, मेरे अंदर इतना तुच्छ विचार कैसे आ गया। अपने सुख के लिए, अपने निजी सुख के लिए, थोड़ी सी अपने लाभ के लिए मैं इतना बड़ा गंदा काम करने जा रहा हूं। इसका मंथन हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये मंथन है तब तो समझे कि भगवान की कृपा की कुछ है हमारे ऊपर, भगवान की दृष्टि है। अगर ये चिंतन हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है और कुछ नहीं। इससे भगवान हमारी इन बातों से हमको बचाए। भरत महाराज का पतन हिरण के बच्चे के ऊपर हुआ है, हम लोगों का क्षण क्षण पतन है, विचारों में पतन है, सोच में पतन है, अपने थोड़ा सा लाभ के लिए, सुख के लिए दूसरे के शोषण का पतन है, दूसरे का अहित हम चाहते हैं। ये भरत महाराज इसलिए हमको उदाहरण दे रहे हैं। इससे हमारे अंदर ये वृत्ति नहीं, अभी ऐसा नहीं कि हम भी गंडकी नदी में जाएंगे, फिर एक हिरनी आएगी दौड़ करके मेरे सामने कूदेगी, फिर उसका बच्चा होगा, मैं उसको पकड़ के लाऊंगा। जरूरी है सबके साथ हिरण का ही बच्चा आएगा? ये सब हिरण के बच्चे के ही स्वरूप हैं। ये दूसरी वृत्तियां भी, ये हिरण, हिरण क्या है, माया है वो। और यही हिरण बाद में महाराज रहुगुण बनता है और महाराज भरत से शिक्षा लेकर के भगवत भक्ति प्राप्त करता है। ये सब माया के ही स्वरूप हैं और भगवान की कृपा से हम इससे बच सकते हैं। ऐसी प्रार्थना हमको भगवान से करना है। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न हो, कमेंट्स हो तो आप दे सकते हैं। जय कीर्तन करो ते गुण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Jaya Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jaya Prabhu Pada. Jai Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jai Prabhu Pada.
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इताई गौर प्रेमानंदे।